हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी विधिक के साथ न्यूयॉर्क में उसके घर पर थी। आंशी नहीं जानती थी इस वक्त वो किस जगह पर है। आंशी उठी तो उसने विधिक को सोए हुए पाया। फिर उसे वहां हरलीन मिली। हरलीन ने भी आंशी को नहीं बताया कि वो किस जगह पर है। बहाने से हरलीन ने आंशी को वापस रूम में भेज दिया ताकि वो ब्रेकफास्ट के लिए आ सके। आंशी अमन से कॉन्टैक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि इस वक्त वो कहाँ है, और ये बात उसे सिर्फ विधिक बता सकता था। विधिक के करीब जाने के लिए आंशी ने एक बोल्ड सी ड्रेस पहनी और फिर उसे जगाने के लिए गई। आंशी विधिक को उठाने के लिए उसके पास झुकी तो उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। आंशी जल्दी से खड़ी हुई और अपनी ड्रेस सही करते हुए धीरे से बोली, ये तो क्या करने जा रही है आंशी, तुझे विधिक को खुद से दूर रखना है, ना कि उसे पास लेकर आना है। अमन सही कहता है, कई बार सच में मेरा दिमाग काम नहीं करता और मैं उल्टी सीधी हरकतें करने पर आ जाती हूँ। आंशी जल्दी से उठी और चेंज करने के लिए जाने लगी। तभी विधिक की नींद खुल गई थी। उसने आंशी का हाथ पकड़कर उसे रोका। उसके ऐसा करने पर आंशी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो जल्दी से अपनी ड्रेस आगे से सही करने लगी, तभी विधिक ने उसे पलटकर अपनी तरफ किया। विधिक उठकर बैठ चुका था। उसने आंशी की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, जाओ जाकर चेंज करके आओ और आगे से ऐसे कपड़े पहनकर इस घर में मत घूमना। इस घर का वर्किंग स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर मेल ही है। आई डोंट वॉन्ट कोई गलती से भी तुम्हें इस तरह देखे। सब छोड़ दिया है तो उन्हें जान से भी नहीं मार सकता, तो ऐसा कुछ मत करना कि मुझे गुस्सा आए। वो मैंने जल्दबाजी में ड्रेस ली थी, चेंज करने के लिए ही जा रही थी, आगे से नहीं पहनूंगी, आंशी ने मासूमियत से कहा। वो खुद नहीं चाहती थी कि विधिक को गुस्सा आए। आंशी जाने लगी तभी विधिक ने उसे रोकते हुए फिर से कहा, रुको बटरफ्लाई। इसी के साथ आंशी के कदम वहीं रुक गए थे। वो विधिक की तरफ मुड़ी तब विधिक ने कहा, आई वॉन्ट अ किस राइट अवे। बोलते हुए वो आंशी को काफी गौर से देख रहा था। विधिक की बात सुनकर आंशी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आंशी जानती थी कि अगर वो विधिक को मना करती तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता था, साथ ही वो उसे किस भी नहीं कर सकती थी। आंशी अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो विधिक फिर से बोला, बटरफ्लाई मैंने तुमसे कुछ कहा है, शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मुझे किस करना है। देखो विधिक, मैं पूरे दिल से यहाँ पर आई हूँ, पर मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, मुझे भी टाइम चाहिए। पिछली बार तुमने मेरे साथ जो भी किया था, या चंडीगढ़ में भी मुझे जिस तरह से डराया धमकाया, उसके बाद मुझे तुमसे डर लगता है। तुमने कहा था तुम सब छोड़ दोगे, फिर भी तुमने मेरे सामने दो आदमियों को मारा। आंशी ने जैसे तैसे करके अपने दिल की बात रखी। आंशी की बात सुनकर विधिक ने ईविल स्माइल करते हुए कहा, लेट मी करेक्ट यू बटरफ्लाई, दो नहीं सिर्फ एक, मैंने तो एक को ही मारा था। बोलते हुए विधिक खड़ा हो गया और आंशी के पास आने लगा। झूठ मत बोलो विधिक, तुम पर सूट नहीं करता, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। हम दोनों के वहां से निकलने के बाद तुम्हारा आदमी वहीं पर था, जरूर तुमने उसे दूसरे वाले आदमी को भी मारने का कह दिया होगा, वो मर चुका है ना, आंशी ने विधिक की तरफ देखकर पूछा। वेरी स्मार्ट बटरफ्लाई, बड़ी होने के साथ साथ तुम स्मार्ट होती जा रही हो, विधिक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसने तुम्हें छुआ था, थप्पड़ लगाया तुम्हें, गला पकड़ा और घसीटा, तो क्या लगता है इतनी आसानी से जाने देता। ये सब तो तुमने भी किया है विधिक, खुद को क्या सजा दोगे तुम, आंशी ने जवाब दिया। जब लंदन में विधिक ने आंशी को उसके घर में ही हॉस्टेज बनाकर रखा था, तब उसने उस पर काफी टॉर्चर किया था, जिसमें थप्पड़ लगाना, गला पकड़ना या घसीटना तो बहुत नॉर्मल था। जैसे जैसे आंशी बोल रही थी, वैसे वैसे विधिक के चेहरे के भाव सर्द होते जा रहे थे। उसने आंशी की आंखों में देखकर सख्त आवाज में कहा, मैंने भी सजा भुगती है बटरफ्लाई, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और इतने टाइम तक मुझसे दूर रही। तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए प्यार देखा था, उन आंखों में अब अपने लिए डर देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो जबरदस्ती भी नहीं करूंगा, पहले भी नहीं की थी तो आगे भी नहीं। लेना है उतना टाइम ले लो, लेकिन दो महीने, दो महीने काफी है तुम्हारे लिए, उससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता। थैंक यू विधिक, हाँ दो महीने मेरे लिए काफी होंगे, मुझे मेरा रूम बता दो जहां मैं, आंशी बोल रही थी तभी विधिक ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हारे करीब नहीं आने का कहा है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें दूर जाने दूंगा, तुम यही मेरे साथ इस रूम में रहोगी, हम ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करेंगे बटरफ्लाई, लेकिन मेरा केस अभी पेंडिंग है, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। आंशी ने कुछ पल सोचा और फिर धीमे कदमों से चलकर विधिक के पास आई। उसने विधिक के गाल पर हल्का सा किस किया और फिर उससे दूर होकर कहा, तुम्हें किस चाहिए था, फिर जगह चाहे जो भी हो। अपनी बात कहकर आंशी वहां से चली गई। उसके जाते ही विधिक के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने खुद से कहा, ट्रेनिंग तो हुई है तुम्हारी बटरफ्लाई, चलो शुक्र है इन सब में तुमने अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाई, वरना तुम्हारी जगह कोई एजेंट होती तो इस वक्त मेरे साथ बेड पर होती। और आई स्वेयर बटरफ्लाई, अगर तुम जबरदस्ती मेरे क्लोज आने की कोशिश करती तो फिर मेरा गुस्सा तुम्हें झेलना पड़ता। वहीं आंशी क्लोसेट एरिया में कपड़े चेंज कर रही थी। उसने अपने लिए नॉर्मल क्रॉप टी शर्ट और पैंट्स निकाले। ड्रेस चेंज करते हुए आंशी के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम जैसे भी हो लेकिन जबरदस्ती नहीं करोगे, इस बात का यकीन था मुझे। जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ हर बार तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो विधिक, कि काश तुम एक अच्छे इंसान होते। सोचते हुए आंशी की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। जल्द ही उसने खुद को संभाला और रूम से बाहर निकली। विधिक अपने आईपैड में कुछ चेक कर रहा था। विधिक आंशी के पास आई और उसने कहा, जाकर फ्रेश हो जाओ, बुआ ने हम दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाया है। आंशी जब विधिक से बात कर रही थी तब भी उसका ध्यान अपने आईपैड में ही था। आंशी की बात खत्म होते ही विधिक ने उसे एक नजर देखा तो वो बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी।